मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो गत सत्र में अतिथि संविभाग व्रत का विवरण अपन ने विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से विस्तार के साथ देखा। और आचार्य स्वामी कुमार मुनि, जिन्होंने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ लिखा है, उनके अनुसार और आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने वसुनंदी श्रावकाचार लिखा है, उनके अनुसार मूल गाथा में ही उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि तीनों पात्र की नवोपचार विधि करनी है। तीनों पात्रों की, केवल मुनियों की नहीं, तीनों पात्रों की नवोपचार विधि करनी है, ऐसा उन्होंने मूल गाथा में लिखा है। ये अपन ने कल पढ़ा था। अब फिर अभी वर्तमान में जो प्रश्न आते हैं प्राय करके कि अगर हम वस्त्रधारियों की भी पूजा करने लग गए तो फिर दिगंबरत्व का महत्व क्या रह जाएगा। सवस्त्रों की पूजा दिगंबर आमनाय में कैसे मान्य की जा सकती है, ऐसी शंकाएं आजकल सुनने में आती है, पर इनका समाधान सरल है कि दिगंबरों में ही सवस्त्र निर्वस्त्र दो भेद होते हैं। निर्वस्त्र जो होते हैं वो दिगंबर साधु होते हैं, और बाकी लोगों को क्या आप दिगंबर मानना छोड़ दोगे? दिगंबर साधु के अलावा दिगंबर आमनाय में बाकी जितने भी लोग हैं, क्या उनको आप दिगंबर जैन मानना बंद कर दोगे? ऐसा संभव नहीं है। अब रही बात नवोपचार विधि की, तो फिर यहां पर ये जिन शासन आगम के आधार पर चलता है, और आगम का स्थान इतना ऊंचा है कि यहां एक प्रायश्चित समुच्चय नाम का ग्रंथ है, उसके अंदर लिखा है कि अगर साधु आगम से विरुद्ध उपदेश करते हैं और ये बोल करके करते हैं कि मैं जिनेंद्र भगवान की बात बता रहा हूं, और जिनेंद्र भगवान की बात न बताकर वो अपने मन की बात बताते हैं, तो उनको बहुत बड़ा प्रायश्चित, उनको वापस दीक्षा लेना पड़ती है। भले उनकी दीक्षा 45 साल पुरानी भी क्यों न हो, यदि वो ये कह करके उपदेश करते हैं कि मैं जो बता रहा हूं वो जिनेंद्र की वाणी है, और वो जिनेंद्र की वाणी नहीं होती, तो यथा छंद नाम का एक दोष है वो उनको लगता है, और उस दोष का प्रायश्चित पुनर्दीक्षा है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं आप कि जिनवाणी का स्थान कितना ऊंचा है। अगर साधु जिनवाणी का उल्लंघन करते हैं तो वो पुनर्दीक्षा के पात्र बन जाते हैं। जिनवाणी से बड़ा कोई नहीं है। प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी, उज्जैन वाले एक महान विद्वान थे, जिनको आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने प्रतिभा स्थली की ब्रह्मचारिणी दीदियों को संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था, और उन्होंने कई महीनों तक संस्कृत पढ़ाई थी। उनसे हमारा अमरावती में मिलन हुआ था, और उनकी एक रचना है श्री गुरु महिमा नाम की, एक रचना है उनकी, एक पुस्तक है, और हमने अपनी एक कृति उनको पढ़ने दी थी, गुरु शिष्य दर्पण, तो उनकी कृति के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। श्री गुरु महिमा नाम की जो कृति है उसके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अपन नमोकार मंत्र में अरिहंत भगवान को पहले इसलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि अरिहंत की वाणी से ही जीव सिद्ध बनते हैं। तो किसी संघ का कोई निजी नियम हो उस पर अपन कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन शास्त्रों के जो नियम है वो नियम जिन शासन में मान्य किए जाएंगे। उदाहरण के लिए किसी संघ में भोजन के अंतर्गत कोई वस्तु ना चलती हो, मान लो किसी संघ में तरबूज नहीं चलता, किसी संघ में सिंघाड़ा नहीं चलता, किसी संघ में टमाटर पपीते नहीं चलते, अलग अलग संघ है, तो किसी संघ विशेष में पलने वाला कोई नियम संपूर्ण जिन शासन मान्य करे ऐसी बाध्यता नहीं है, वो उनका नियम है। जैसे किसी संघ में ये नवोपचार विधि सवस्त्र पिच्छीधारियों की नहीं होती तो इससे दूसरों को आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आप ये कहो कि जहां होती है वो मिथ्या दृष्टि है तो फिर बड़ी भारी आपत्ति हो जाएगी। इतना बोलने के पहले थोड़ा विचार कर लेना कि ये मिथ्या दृष्टि का आरोप कहां कहां तक जा रहा है, इसके बारे में सोच लेना। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री की माता श्री, जिनका नाम श्रीमंती था, उन्होंने जब दीक्षा ली थी फरवरी सन 75 में, तब आचार्य धर्मसागर महाराज श्री ने उनको दीक्षित किया था। उनकी दीक्षा बहन अभी भी विद्यमान है शिखर जी में, सुरत्नमती माता जी। उन्होंने दीक्षा लेकर अपने अंतिम श्वास तक, जब तक उन्होंने अंतिम आहार लिया तब तक नवोपचार विधि से आहार लिया, और उनकी जब संलेखना हुई सन 1984 में जून महीने में, तब खुद आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने जबलपुर में श्रद्धांजलि सभा के अंदर उनको श्रद्धांजलि दी। तो हम क्या कहना चाह रहे थे समझ में आ रहा है? यदि ऐसा कोई निर्णय कर ले कि जहां जहां वस्त्रधारियों की पूजा हो रही है वो सब मिथ्यात्व है, तो फिर आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने मिथ्यात्व को श्रद्धांजलि दी। बात समझ में आई? नहीं क्लियर? क्योंकि समयमति आर्यिका माताजी उस प्रक्रिया से ही आहार लेती रही, और यदि आचार्य श्री उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग भी अभी जबलपुर में अगर किसी के पास हो तो हो, पता नहीं, बहुत ही अद्भुत व्याख्यान था वो आचार्य श्री का। योग के ऊपर उनने बोला था, श्वासोच्छ्वास के ऊपर उनने बोला था, वो व्याख्यान एकदम कानों में गूंजता आज भी। तब तो हम संघ में भी शामिल नहीं हुए थे, हम तो एक ऑर्डिनरी सिविल ड्रेस में बैठ के सुन रहे थे, पर स्मृति वैसी की वैसी है, याद है कि उनने क्या कहा था। और अगर उन्होंने ये श्रद्धांजलि दी है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उनकी धारणा वैसी नहीं है जैसी नियम बनाने वालों की धारणा है। जैसी घोषणा करने वालों की धारणा है उससे भिन्न है। इसी तरह आचार्य श्री के पास ऐसा हमें ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने एक संस्मरण सुनाया कि जब आचार्य श्री पहली बार आर्य का दीक्षा दे रहे थे 10 फरवरी 1987 में, तो आचार्य श्री ने उनसे कहा, ब्रह्मचारिणी दीदियों से, कि अगर पूजा और पाद प्रक्षालन नहीं होगा तो चलेगा। उन्होंने बोला आप जैसा आदेश देंगे वैसा चलेगा, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ब्रह्मचारी राकेश डी राकेश, राकेश शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध थे, जिनका सिद्धायतन है सागर में, उन्होंने आचार्य से कहा कि आप ये नई प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं तो आप की जो शिष्याएं हैं ब्रह्मचारिणी दीदियां हैं वो अन्य आर्यिकाओं की नवधा भक्ति कैसे करेंगी? अगर आपके ही संघ में वर्जित है तो वो अन्य आर्यिकाओं की नवधा भक्ति कैसे करेंगी? तब आचार्य श्री ने जो वाक्य बोला वो ये था, मैंने कराने को मना किया है करने को नहीं। मैंने आर्यिकाओं को नवधा भक्ति कराने को मना किया है, ब्रह्मचारिणियों को नवधा भक्ति करने को मना नहीं किया। और बराबर आचार्य श्री के संघ की ब्रह्मचारिणियों ने आर्यिका विशुद्धमती माता जी, आर्यिका सुपार्श्वमती माता जी, इन सब आर्यिकाओं के पास जाकर पूरी नवोपचार विधि से उनकी आहारचर्या संपन्न की है। और ये आधुनिक युग में ये सारी बातें, नई नई बातें सामने आई है, उस समय ये चर्चा नहीं थी कि आर्यिका की पूजा करने वाला मिथ्या दृष्टि है और पूजा कराने वाली आर्यिका मिथ्या दृष्टि है। ये बात मिथ्यात्व तक नहीं पहुंची थी उस समय, कालांतर में ये सब स्थितियां ऐसी बनी। और अब तो ऐसा हो गया कि पिछली परिवर्तन में नियम जो होते हैं उन नियमों में जाप के नियम होते हैं, फिर अभक्ष के त्याग के नियम होते हैं, ब्रह्मचर्य के नियम होते हैं, और फिर सवस्त्र पूजा के त्याग का भी नियम होता है। कपड़े वालों की पूजा का त्याग करो तो फिर हमारी पिछियां पुरानी वाली तुम्हें मिलेगी, हम नहीं ले लेंगे। पिछली परिवर्तन के दिन ऐसे प्रक्रिया होगी। यहां तक बात हो गई। और सतना में तो ऐसी घटना हुई कि दो पिछेधारी थे, प्रभावना अच्छी हो गई, फिर उन्होंने कायोत्सर्ग करवा करके नियम दिया कि कभी मत करना कपड़े वालों की पूजा। तो फिर अन्य संघ की आर्यिकाएं वहां पहुंची, भरतेश्वरी माता जी और उनके साथ में और भी दो माता जी थी, तो आहार देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। पर उनको वक्तव्य देने का अवसर मिला और उनका वक्तव्य सुनने के लिए सब लोग तैयार थे। उन्होंने कहा कि आपने जहां से भी जो भी शिक्षा प्राप्त की है उससे हमें कोई हानि नहीं हुई है, हमारी कर्म निर्जरा हुई है, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि आपने ब्राह्मी सुंदरी और चंदन बाला का अपमान किया है। हम स्वयं जब 2002 में आचार्य श्री के पास नेमावर गए थे तब हमने मुनि चंद्रसागर महाराज श्री से प्रश्न किया था कि ये क्या है महाराज, ये कैसे नियम चल रहे हैं, कपड़े वालों की पूजा नहीं करना। जिनके गुरु ने उनको वैसी विधि बताई है आहार की, वो गुरु के वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकती। आर्य का खुद भोजन बना नहीं सकती और होटल में खा नहीं सकती। अगर हिंदुस्तान के सारे श्रावक ये नियम ले ले, ये हमने ब्रह्मचारिणियों से कहा था, इंस्पेक्टर रेखा दीदी थी उस टाइम, और फिर और भी डॉक्टर नीलम दीदी भी थी और भी बहनें थी, हमने कहा कि अगर ये नियम जो सतना में दिया गया है और भी कई जगह दिया गया है, ये अगर भारत के सभी जैन श्रावक, दिगंबर जैन श्रावक ले ले, सारे गृहस्थ ले ले, तो क्या होगा पता है? आप तो उनको मिथ्यात्व से बचा लोगे, आपकी नजरों में वो सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, लेकिन वो पिच्छेधारी जो उसके बाद आहार नहीं लेंगे, चाहे प्राण निकल जाए वो आहार नहीं लेंगे, अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, वो तो फिर उनको स्टार्व करने का, उनको भूखा मारने का अपराध किसके माथे पर आएगा? ये प्रश्न हमने पूछा था उनसे। आचार्य श्री के पास आर्य का गणिनी माता जी, सुपार्श्वती माता जी गई थी, नवोपचार विधि से आहार लिया था उन्होंने वहां बीना बारा में। अभी खुरे में गणनी आरिका माता जी, ज्ञानमती माता जी गई थी, नवोपचार विधि से हार लिया था। फिर ये बैकग्राउंड में ये सब क्या चल रहा है नाटक? आपके अंदर वो करुणा भी नहीं है, वृत्यनुकंपा जिसको कहते हैं, सातावेदनी के आश्रव के अंतर्गत बताइए, जीव दया की बात तो हम नहीं कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि जीव दया की बात करेंगे तो फिर आपके पास और एक तर्क होगा कि ठीक है, हाँ वो जीव है, भूखे ना मर जाए तो उनको दया से हम दे दें। दया से दान नहीं लिया जाता साधुओं के द्वारा। मूलाचार में लिखा है कि जो गृहस्थ साधु को करुणा का पात्र मानकर आहार देता है, कभी नहीं लेना उससे आहार, साधु करुणा के पात्र नहीं है, उस करुणा के पात्र नहीं, गृहस्थ करुणा का पात्र है साधु के लिए। साधु क्या करुणा करेगा, ये गृहस्थ क्या करुणा करेगा साधु पर? गुरु का उपकार होता है भव्य जीवों के प्रति, वो उपकार करेंगे, वो करुणा करेंगे साधु पर? मतलब वो भूखे हैं, दया से उनको दान दे दे, ये पद्धति नहीं है जिन शासन में। और आपके पास केवल तर्क है, आगम हो तो बताओ, तर्क नहीं चलते जिन शासन में। आपसे बड़े बड़े तार्किक इस दुनिया में बैठे हुए हैं, इसी हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, अभी युवा पीढ़ी में भी कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके तर्क आपको भारी पड़ जाएंगे। वो केवल त्याग का सम्मान करते हैं, इसलिए मर्यादा में रहते हैं। यहां पर अपन ने जो अध्ययन किया, कितने सारे शास्त्र हमने आपके सामने रखे, किसी शास्त्र में इसका निषेध नहीं था। फिर ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, कहीं राजा ने अर्घ चढ़ा दिया या फिर और कहीं कोई ऐसा प्रसंग आ गया, तो वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आहार दान के समय ये चीज होना गलत है। ऐसे कैसे गलत है? आपको गलत लगता है इसलिए गलत है? देखो एक बात सुनो, राजा धरणी ध्वज ने प्रिय धर्म क्षुल्लक के लिए पूजा और अर्घ की प्रक्रिया की और राज दरबार में की, तो जो क्षुल्लक जी राज दरबार में राजा द्वारा पूजा और अर्घ के पात्र हैं, वो चौके में कैसे अपात्र हो जाएंगे? इसका हेतु हमें समझना है। चौके में कहां से अपात्र हो गया? तो इस विवाद को अब विराम देना ही कल्याणकारी है, अन्यथा देखो जो तपस्या के मार्ग पर है वो कभी शायद इन कर्मों को काटकर इनकी निर्जरा करके अपना कल्याण कर ले, लेकिन जो राग के मार्ग में है वो इन कषायों में अगर फंस गए और साधुओं की अवहेलना की, कितनी आर्यिकाओं को भूखा रहना पड़ा है इन नियमों के कारण। अभी श्रवण बेलगोला में एक माता जी थी, एक आर्यिका माता जी थी, उनने कहा कि मुझे 3 दिन आहार नहीं मिला है, ये नियम था वहां के लोगों का कि हम कपड़े वालों की पूजा नहीं करते, 3 दिन आहार नहीं मिला। सम्यक श्री माता जी केशलोंच करके आहार के लिए उठी, लेकिन नहीं, केशलोंच करो, अंतराय हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, हम पत्थर दिले पत्थर, कोई पिघलने नहीं वाला यहां पर, हम सम्यक दृष्टि है, हम मिथ्यात्व में एक कदम नहीं रख सकते। पहले आगम से तो देखें कि जिसको मिथ्यात्व समझा जा रहा है वो वास्तव में मिथ्यात्व है क्या। श्री राम ने सीता जी के साथ मिलकर, दोनों शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव, वर धर्मा आर्यिका की मंदिर के अंदर पूरे संघ के साथ उत्तम पूजा की, पद्म पुराण में लिखा है। और पद्म पुराण मान्य नहीं है कुछ साधुओं को, पद्म पुराण मान्य नहीं है, वो मूल संघ का ग्रंथ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप बच के कहां जाओगे? आदि पुराण के बारे में बताओ क्या करना है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि जब ब्राह्मी आर्यिका दीक्षित हुई थी वृषभ सेन गणधर से, तब देवों ने वहां पर उनकी पूजा की थी। देवों ने कहां पर? समवसरण में। और समवसरण में कौन सी जगह पर? तीर्थंकर के समक्ष सभाभूमि में। वो भी मिथ्या दृष्टि थी क्या देव? और पूजा कराने वाली आर्यिका मिथ्या दृष्टि थी क्या? सोचे समझे बिना बोलना आवश्यक नहीं है, पहले शांति से समझ लो, सब शास्त्रों को देख लो, और आरोप लगाने के पहले ये भी विचार कर लो। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य शांति सागर महाराज श्री की संगत से 2 आर्यिकाओं को पूरी नवोपचार विधि से ब्रह्मचारी अवस्था में, जब ब्रह्मचारी भूरामल जी थे, तब उन्होंने पूरी नवोपचार विधि से आहार दान दिया था, वो भी मिथ्या दृष्टि थी क्या? और आचार्य शांति सागर महाराज के संघ की आर्यिका भी मिथ्या दृष्टि थी क्या? और यदि वास्तव में आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतना ज्ञान है, और अगर आपके पास आगम के प्रमाण है तो बताइए ना। नियम देना तो एक निम्न श्रेणी की प्रवृत्ति हो गई, वो भोले श्रावक है, वो गुरु पर श्रद्धा रख करके नियम ले रहे हैं, वो ये मान करके नियम ले रहे हैं कि इसमें मेरा कल्याण होगा। और वहां जो आर्यिका गत प्राण हो जाए, मान लो 5 दिन से उन आर्यिका का आहार नहीं हो पा रहा है, और आपने 6ठे दिन और ये अपना नियम सामने खड़ा कर दिया कि हम कपड़े वालों की पूजा नहीं करते, और मान लो उस दिन उनकी आयु का क्षय हो जाए, तो वो नियम आपको सम्यक दृष्टि बनाएगा? वो नियम आपको सदगति देगा? क्या श्री राम मिथ्या दृष्टि थे? क्या वो देव मिथ्या दृष्टि थे? कितने सारे शास्त्रों में ऐसे उद्धरण मिलते हैं, और फिर आपके पास केवल तर्क है, पंचम गुणस्थान है। अरे पहले गुण स्थान वाले मुनि आते तो भी नवोपचार विधि होती है, पंचम की क्या बात करते हो? आपको दिख रहा है यह गुण स्थान? ये हिंसक मार्ग है, ये अति क्रूरता है, इसमें कोई पार नहीं है क्रूरता का। क्योंकि यहां तो अगर कोई प्यासा कुत्ता आ जाता है तो उसको पानी देते हैं, जानवरों पर भी दया पाली जाती है, गो रक्षा की बात की जाती है, जीव दया की बात की जाती है, और यहां तो आप व्रतियों के प्रति, अथवा ऐसा है कि आपने ये मान लिया हो कि अरे ये बाहर जो दूसरे संघ के साधु लोग हैं वो कोई साधु हैं क्या, ऐसा मान लिया है क्या? उनको हम साधु मानते ही नहीं है। अगर ऐसा मानते हो तो फिर एक ये चुनौती की बात है। उनमें से कई ऐसे साधु हैं जिनकी चर्या का और जिनके ज्ञान का शतांश भी आपके पास नहीं है, याद रखना, सौवा हिस्सा भी नहीं है आपके पास। आप किस बलबूते पर अपने आप को इतना बड़ा समझते हो? ये अभिमान डुबाने वाला है। इसलिए जो यहां पर स्पष्ट गाथा में लिखा हुआ, या तो फिर इस गाथा को आप इसका सही अर्थ बताओ, क्या है गाथा का अर्थ? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 360 नंबर की गाथा का अर्थ बताओ। बिल्कुल हम पुकार करके कह रहे हैं कि बताओ इसका अर्थ क्या है, क्या थी गाथा, याद है आपको? कल अपन ने पढ़ी थी गाथा, ये थी प्राकृत भाषा की प्राचीन गाथा। और अभी कुछ विद्वानों में तो ऐसा भी वो चल रहा है कि ये कुमार कार्तिकेय जो स्वामी कुमार मुनि है वो संभव है कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी से भी पुराने हों, ऐसा भी है एक मत। आचार्य से इस विषय में चर्चा हुई थी हमारी जब बुंदेलखंड में विहार हो रहा था, और किसी मंदिर की छत पर हम लोग बैठे हुए थे, डाना सुरखी वगैरह कहीं किसी के पास में, तो वहां बैठ करके हम लोग पांडव पुराण पढ़ रहे थे, हम और माधव सागर महाराज। और पांडव पुराण के मंगलाचरण में पहले कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के ग्रंथकार को पहले नमस्कार किया, और उसके बाद में ये 1986 के आसपास की बात, 87 या 86 की, उसके बाद में कुंदकुंद आचार्य को नमस्कार किया। तो आचार्य श्री ने यही कहा था कि हाँ ऐसा भी एक मत है कि ये पहले हुए हैं। तो फिर अब काल का तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अगर वो पहले हुए हैं तो फिर आप समझ लो कि वो कुंदकुंद आचार्य से भी पुराने हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, तिविहे पत्तम मिसया सद्धाई गुणे ही संजुदो नाणी दानम जो दे दिशयम नव दान विही ही संजुतो। जो ज्ञानी श्रद्धा आदि सात गुणों से संयुक्त है और नौ दानों की विधि पूर्वक, नवोपचार विधि पूर्वक स्वयं दान करता है, किनको दान करता है? तिविह पत्तमी, त्रिविध पात्रों को, केवल मुनियों को नहीं, त्रिविध पात्रों को, जो सात गुण और नवधा नवोपचार विधि पूर्वक दान करता है वो अतिथि संविभाग व्रती है। पांच गाथाओं में इसका वर्णन है। और आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने, कि चार प्रकार के उत्तम आहार होते हैं जो देने योग्य होते हैं। पात्रों को आहार में चार प्रकार के आहार दिए जाते हैं, असनम पानम खैमम सायम इति चौव्यो वराहारो पुवुत्तनो विहाणी हितिविह पत्तस्य दायव्वो। अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य, ऐसा चार प्रकार का उत्तम आहार होता है, वह
पूर्वोक्त नौ विहाणी ही पूर्वोक्त नौ क्रियाओं के साथ नौ अनुष्ठानों के साथ तिविह पत्तः सदायव त्रिविध पात्र के लिए देने योग्य है।
केवल मुनि के लिए तो नहीं लेगा।
अब इन गाथाओं का हम क्या करें, ये इसका समाधान दे। सारे कोई भी हम सब विद्वानों से अपील कर रहे हैं कि इनका आप अर्थ करके हमें दीजिए, या फिर जितने आचार्य हैं वो बताएं कि इसका क्या करना। नवोपचार विधि तीनों की बता रहा हूं, क्या करना। मुनि श्री अपूर्व सागर महाराज श्री से हमने पूछा था कि ये त्रिविध पात्र में अविरत सम्यक दृष्टि भी है, विरताविरत भी है, सकल विरत भी है, तीनों पात्र हैं और तीनों के लिए नवोपचार विधि लिखी है। तो उस समय हम लोगों ने आपस में ऐसा विचार किया था कि ये त्रिविध पात्र द्रव्य की अपेक्षा से तो जो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तीन मुद्राएं बताई है साधुओं की, एकम जिनस्य रूपम, एक तो जिनेंद्र भगवान का रूप है, बीयम उत्कृष्ट सावयाणम तु, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का क्षुल्लकों का वेष है, और अवरठियाण तयम और अवरस्थिता जो आर्यिका है उनका तीसरा वेश है। अब मुद्रा तो यही रहेंगी, ऐसा हम लोगों ने विचार किया था। इस पर हम और विद्वानों के और आचार्यों के अभिमत मांगेंगे विनम्रता पूर्वक कि ये जो विचार था हम लोगों का वो ये था कि अतिथि संविभाग व्रत है तो उसमें तीन पात्र बताए हैं, पर वो तीनों पात्र अतिथि होंगे तब उनकी नवोपचार विधि की जाएगी। और अतिथि किनको कहते हैं, अतिथि आज आमतौर पर मेहमान को अपन अतिथि कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत नवोपचार विधि जिनकी की जाती है वो अतिथि कौन है। तो संयम विनाशयन नतति भिक्षार्थम भ्रमति न विद्यते तिथिरस्येति अतिथि। जो संयम की रक्षा करते हुए गमन करते हैं, आहारचर्या करते हैं, जो भिक्षा वृत्ति से आहार के लिए भ्रमण करते हैं, निमंत्रण से नहीं जाते, और जिनकी कोई तिथि नहीं है, किस चौके में कौन सी तिथि पर जाएंगे ऐसी कोई फिक्सिंग बात वाली बात नहीं है, उनको अतिथि कहते हैं। तो अब बात ऐसी हुई कि नवोपचार विधि तो अतिथि की हो रही है, लेकिन अब तीन पात्रों का जो विभाग किया है वो तीन पात्रों का विभाग अतिथि संविभाग व्रत के ही अंदर किया है, अन्यत्र नहीं मिलेगा आपको। तो इससे ऐसा हम लोगों ने वहां पर विचार किया कि हो सकता है कि जैसे मुनि की मुद्रा है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से गुणस्थान मिथ्यात्व है, मान लो अभव्य मुनि है, तो फिर उनको कुपात्र कहा है। और अगर अंदर से चौथा गुणस्थान है तो उन्हीं को जगन्य पात्र, और अगर अंदर से पांचवा गुणस्थान है, अणुव्रत रूप भाव है उनके, बाहर से महाव्रती है लेकिन अंतरंग में अणुव्रत रूप भाव है आत्मा में, तो फिर वो मध्यम पात्र हो गए। और उत्तम पात्र तब होंगे जब महाव्रत रूप या उपचार महाव्रत रूप परिणाम हो। ये पंडित रतन चंद मुख्तार जी ने व्यक्तित्व और कृतित्व नाम के दो भाग हैं उनके, उसमें पहले भाग के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि आर्यिका संयतिका है, उनका वर्णन मूलाचार में आया है, इसलिए उनकी श्रेणी श्रावक की श्रेणी नहीं होती, साधु की श्रेणी होती है, पर साधु की श्रेणी होने के कारण उनकी नवोपचार विधि होती है, ऐसा रतन चंद मुख्तार जी ने लिखा है। तो भावों के ऊपर पात्रों का विभाग हो गया, पर इसकी परीक्षा कैसे करें, तो पहले तो बाह्य प्रवृत्ति से देख लें, फिर उनकी चर्चाओं से या फिर उनकी धारणाओं से भी कुछ ज्ञान हो सकता है, जिससे जो आगम को पूर्णतः मान्य करते हैं तो फिर अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये आगम को चूंकि पूर्णतः मान्य करते हैं, इस अपेक्षा से ये सम्यक दृष्टि है। सम्मा इट्ठी जीवो उवइट्ठम पवेणम तु सद्देवी, गुमटसार जीव कांड की 27 क्रमांक की गाथा में लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव आगम पर श्रद्धान करता है। तो जिन साधुओं को आगम के प्रति पूर्ण श्रद्धान है तो अपन मान सकते हैं कि वो सम्यक दृष्टि है। तो ये सारी चर्चाएं थी। तो अभी अपन ने जो बातें की, एक बात तो ये थी कि आचार्य की माता श्री का आचार्य ने सम्मान किया था, श्रद्धांजलि दी थी, वंदना तो नहीं करते, दिगंबर मुद्राधारी वस्त्रधारी की वंदना तो नहीं करते, लेकिन विनय करते हैं। मूलाचार में दो गाथाएं आती है, नो वंदिज अविरतम किन देश विरतम देवम वा मादा पिता गुरुम अन्न तीर्थम वा, दिगंबर साधु किनकी वंदना नहीं कर सकते? तो बोले अपने जो पूर्व काल के माता पिता थे उनकी वंदना नहीं कर सकते, और देव की वंदना नहीं कर सकते, देवों को आशीर्वाद दे सकते हैं, और जिनके पास व्रत नहीं है उनकी वंदना नहीं कर सकते। वो फिर मनुष्य भी हो, कोई भी हो, राजा भी हो, राजा का भी लिखा है कि राजा की भी वंदना नहीं कर सकते, और अपने टीचर्स पुराने जो टीचर्स थे उनकी वंदना नहीं कर सकते। ऐसे उनने सब दिए हैं वहां पर। और मूलाचार में 384 नंबर गाथा में लिखा है कि इन सब की विनय कर सकते हैं, इन सब की विनय कर सकते हैं साधु, और सावधानी पूर्वक विनय करना है ऐसा भी लिखा है, किसी का अनादर नहीं करना, किसी से उल्टा सीधा मत बोल जाना। ये बात मूलाचार में आई है। तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी, तो वो कोई गलत काम नहीं किया, आगम से विरुद्ध काम नहीं था। वो आर्यिका थी, छोटी थी, कपड़े पहनती थी, पांचवा गुणस्थान था, ये सारी बातें वहां नहीं लगाना। उनके योग्य उन्होंने विनय किए, उन्होंने वंदना तो नहीं की, उनके योग्य विनय की, वो आचार्य हैं। और माता श्री आर्यिका थी तो उन्होंने सल्लेखना पर श्रद्धांजलि में उनके योग्य विनय की, कोई आपत्ति नहीं थी। इसी प्रकार ब्रह्मचारी भूरामल जी ने आचार्य शांति सागर महाराज श्री के संगस्थ दो आर्यिकाओं का पड़गान करके अपने चौके में आहार कराया पूरी नवोपचार विधि के साथ। ऐसा गणनी आर्यिका सुपार्श्वती माता जी ने अपने एक आलेख में जैन गजट में दिया हुआ है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आचार्य श्री की जो गुरु थे उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में, जब तक वो पड़गान कर सकते थे, अब क्षुल्लक दीक्षा के बाद या एलक अवस्था में या मुनि अवस्था में तो पड़गान नहीं करेंगे, वो जिस अवस्था में पड़गान कर सकते थे उस अवस्था तक तो किया उन्होंने पड़गान, और पड़गान आदि के साथ में पूरी नवोपचार विधि की है। तो इससे क्या घटित होता है, इतना ही समझ लो अपन कि आचार्य महाराज ने जो अपने संघ के पिछेधारियों को नियम दिया है वो नियम केवल उन तक सीमित है, वो आप जिन शासन के ऊपर थोप नहीं सकते। और सबका अपमान हो जाएगा, आप मिथ्या दृष्टि कहोगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि केवल आपका संघ सम्यक दृष्टि और बाकी सारे संघ मिथ्या दृष्टि, क्योंकि आचार्य शांति सागर महाराज जी की पूरी परिपाटी देखो आप, गुरु परंपरा जो देखेंगे आप, आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज, शिव सागर महाराज, धर्म सागर महाराज श्री, अजित सागर महाराज श्री, श्रेयान सागर महाराज श्री, वर्धमान सागर महाराज श्री, अभिनंदन सागर महाराज श्री, इन सब साधुओं के संग में आर्यिकाओं की पूरी नवोपचार विधि होती है, सारे मिथ्या दृष्टि हो गए। फिर इधर देखो आप महावीर कीर्ति आचार्य महाराज श्री की परंपरा में, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज श्री, आचार्य सन्मति सागर महाराज श्री, आचार्य विमल सागर महाराज श्री, आचार्य शंभव सागर महाराज श्री, इन सब में पूरी वही प्रक्रिया चलती थी। तो फिर एक बात पर अडिग रहने के कारण कितने साधुओं के प्रति आपको अविश्वास करना पड़ेगा, अविनय करनी पड़ेगी और उनको भूखा रखना पड़ेगा। तो ये मार्ग कल्याण मार्ग है या अकल्याण मार्ग है, विचार करने की बात। और करुणा दान करना नहीं है, ये बात तो स्पष्ट है। आपको भक्ति पूर्वक दान करना है साधु के लिए। आप वो आपकी दया के पात्र नहीं है, आप दया के पात्र हो। उनका स्थान देखो कितना ऊंचा है, उनकी चर्या देखो और उनका जीवन देखो, उनका त्याग देखो। तो ये अपन ने देखा यहां पर। इसमें आचार्य कह रहे हैं वसुनंदी श्रावकाचार्य में तीन पात्र के लिए, त्रिविध पात्र के लिए, उवुत्त नव विहाणी ही वराहारो दायव्यो, पूर्वोक्त नौ विधानों के साथ ये उत्तम आहार देने योग्य है। तो तीनों पात्र अतिथि की मुद्रा में हो, ऐसा हम लोगों ने विचार किया। ये हम लोगों का अंतिम निर्णय नहीं है, अभी हम लोग जिज्ञासु हैं और विद्यार्थी हैं। इसमें जो भी संशोधन होगा आगम से वो हम लोगों को तत्काल मान्य होगा, विलंब का कोई स्थान नहीं है। आगम से जो भी हम लोगों को इसमें जानकारी मिलेगी, संशोधन मिलेगा, स्वीकार करने में एक क्षण की भी देर क्यों लगे, लग ही नहीं सकती। पर जो ये कहा जा रहा है कि ऐसा करना मिथ्यात्व है, ये बात गले नहीं उतरती, ये बात कानों में भी नहीं उतरती। श्रवण बेलबोल में जब 450 साधु, 35 आचार्य, कई माताजी, कई क्षुल्लिकाएं, कई क्षुल्लक महाराज, एलक और मुनिराज उपाध्याय, जब एक सभा में एक साथ बैठते थे 9 दिनों के लिए, हम लोग सब एक साथ बैठे थे, तब जनता अपने आप को धन्य मानती थी कि काश ऐसा सौहार्द पूर्ण वातावरण सारे साधुओं में हो जाए तो जैन समाज को एक होने में एक दिन भी नहीं लगेगा, सब एक हो जाएंगे। ये मतभेद, मत द्वेष बन गया है, और मत द्वेष जब बन जाता तब मन भेद हो जाता है, मिल ही नहीं सकते मन, हम क्यों जाए वहां। ठीक है भाई, फिर हम माने हम एक बहुत बड़ी वस्तु होती है, हमसे बड़ा कुछ भी नहीं होता दुनिया में। हम जहां आ गया तो वो तो एटम बम हो गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। देख लो आप कौन सा मार्ग अच्छा है, मिलजुल करके वात्सल्य भक्ति और सौहार्द के साथ रहना अच्छा है, या फिर नफरत के साथ, कषायों के साथ, कटाक्षों के साथ और कठोरता के साथ रहना अच्छा है, ये विचारने की बात है। जैनम जयतु शासनम।